बगीचा, आम के बगीचे में सुंदर मधुर आम पका हुआ है और पास ही एक नीम का बगीचा है, निमौरी पकी हुई है। कौवे वहां पर नहीं जाएंगे, वहां कौन जाएगा? केवल कोकी। इसलिए इस ग्रंथ को वो लोग नहीं पढ़ेंगे, पढ़ करके भी नहीं समझेंगे। यदि पढ़ करके वो नहीं समझ सकते हैं तो फिर लिखने में हमको आपत्ति किया है, हमारी दोनों बात रह जाए। इसके लिए योग्य अधिकारी होंगे अपने योग्य गुरु से और योग्य रसिक भावुक भक्तों से, इसको अनुशीलन करेंगे, उनसे श्रवण करेंगे और बाकी सब लोग इसको कुछ छुएंगे नहीं, कहेंगे से ये बुजुर्ग ये सब बेकार की बात नहीं सुने। इसलिए लिखने में कोई हर्ज नहीं है, अधिकारी व्यक्ति इसको पढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने उनको लिखा। इधर पूज्यपाद दामोदर महाराज जी ने बतलाया, अधिकार का विचार करके हम लोग इसमें चलेंगे, जहां तहां घाटे बाटे बाटे सर्वत्र इसी की अनुशीलन, जा योग्य नहीं है और वहीं पर इस चीज को भी खेल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही हम लोगों के आचार्यों ने कहा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्होंने पद गाया, उन्होंने बतलाया, उन्होंने लिखा। कहां लिखा? ग्रंथ में लिखा, अपने गीति में। मेरा जन्म बरसाना में होगा और कब मेरा विवाह होगा? मेरा नाम होगा, मेरा नाम है, अपना नाम बतलाया सिद्ध का, कमल मंजरी। अपना वर्ण, अपने वस्त्र इत्यादि का वर्णन किया। किस लिए किया? नहीं करेंगे धारा लुप्त हो जाएगी। अधिकारी व्यक्ति इसको श्रवण करेंगे और इसको अनुशीलन करेंगे, दूसरे नहीं। सब समय अधिकार का विचार, किंतु एक निम्न अधिकारी उन्नत अधिकार का विचार करने योग्य नहीं है। ओ, ये क्यों कहते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा क्यों लिखते हैं? वो जहन्नम में जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं, अधिकारी विचार करते हैं। इसलिए वो इन सब पदों को अपने भजन के लिए रूप में गाएगा। साधन और भजन में अंतर इन्होंने दिखलाया। साधन प्राकृत अभिभाव है, जब प्राकृत भाव दूर हो जाता है तब आता है क्या? भजन या सेवा, दोनों एक नहीं है, दोनों में वैशिष्ट्य है। साधन कहेंगे भाव अवस्था के पूर्व तक, यहां तक तो साधन में प्राकृत भाव चाहे और न चाहे अनुस्यूत रहेगा। गुरु वैष्णव की कृपा से साधन करते करते भाव को लक्ष्य करके शुभ दर्शक रगात्मिक भक्तों के हृदय से जब हमारे हृदय में संचरित होगा तो ये भाव भक्ति कही जाएगी। यही भाव भक्ति से भजन आरंभ होगा। इसमें कि प्रेम स्नेह इत्यादि विकसित रूप होंगे, वहां पर प्रेम मई सेवा आरंभ होगी। वो इस जगत भाव की सिद्धि होने पर जब प्रेमावस्था आएगी, जिसमें कि प्रेम स्नेह इत्यादि विकसित रूप होंगे, वहां पर प्रेम मई सेवा आरंभ होगी। वो इस जगत में नहीं, भावावस्था तक इस जगत में। भावावस्था कभी दो बतलाया हमारे भजन रहस्य में, तो महाराज जी ने सुंदर सुंदर बातों को विचारा बतलाया। तो दामोदरशक में नमो राधिकायी त्वदीय प्रियाय, यहां पर मधुर भाव है केवल, उसके लिए लालसा जगी और इसके लिए प्रार्थना। मिला कि नहीं मिला हम नहीं जानते सत्यव्रत मुनि को, इसलिए उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, शायद आप लोगों ने समझा कि नहीं, मैं नहीं समझ सकता। एक गुड़ चीज ये बतलाई, साधु संघ के द्वारा ये सब चीजें प्राप्त होती है। साधु संघ के लिए श्रीमद् भागवत में जो श्लोक दिया गया है दशम या एकादश स्कंद में, जो साधु संघ के प्रभाव से ही नगा पर्वता इत्यादि और नीच जाति ये सब लोग कर गए, उसमें गोपियों का भी नाम दिया गया, साधु संघ का प्रभाव इन पर। वो गोपियां कौन थी जो साधु संघ में उस चीज को पाया? ये श्रीमती राधिका उनके काव्यों के लिए, नित्य सिद्धा के लिए, मत समझना इन्होंने नहीं बतलाया किंतु इंगित दिया हमारे समय से वही बात। राधिका जी के लिए साधन यह नहीं है, कहा है वो जो बड़ तपस्या कीन तीन तो लोक के तारण तरण राधा तू बड़ भागिनी। कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण तरण से तेरे अधीन आधीन। यह मूर्खता है, सिद्धांत इसमें नहीं है, सिद्धांत के विपरीत। राधा जी का कोई ये साधन द्वारा सिद्धि नहीं है। ललिता विशाखा रूप मंजरी इत्यादि ये नित्य सिद्ध नहीं, राधा जी की काय विवाह है। इन लोगों के लिए यह सब विचार नहीं। कब भागवत में झूठा कहा गया? नहीं, ये लोग संघ के प्रभाव से नित्य संघ जो सिद्धा है उनके संघ का, उनकी लीलाओं का कथा श्रवण करके उपनिषद मई जो गोपियां थी और सुतिचरी और जनकपुर वाली रामचंद्र जी की प्रतिमाएं सीता, ये सब संघ के द्वारा हुई। कोई जौथ की अजौथ की हुई, ये लोग संघ के द्वारा, कोई रसिक गोपियों के द्वारा संघ के द्वारा, कोई इनकी लीला कथाओं के माध्यम से, कोई इन रसिक वैष्णवों के संग से उन लोगों की यह लालसा उत्पन्न हुई और उस मंत्र को जप करके साधन भजन करके वैसा ही भजन करके तब कृष्ण के लीला में प्रवेश किया। इसलिए गोपियों में कोई साधन सिद्धा भी है, कोई नित्य सिद्धा भी है। यहां पर नित्य सिद्धा के लिए इन्होंने कहा, मत समझना ये साधन सिद्धा गोपियों के लिए, उनके संग से यहां पर पहुंची है। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने बतलाया गोपीश्वर महादेव, बजरंग जी का उदाहरण उन्होंने दिया। राम में लीला में बजरंग जी यही है, ये शंकर जी ही बने। उन्होंने कहा श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तत्रापि मत सर्वस्व राम कमल लोचना। महाराज ने कहा जैसे उनको तत्व ज्ञान नहीं था, जो राम को ही सर्वस्व मान लिया, तत्व ज्ञान की परिपूर्णतम उनमें थी पूर्णतम, किंतु ये निष्ठा का परिचय है। इसलिए कोई अनाधिकारी व्यक्ति उनकी समालोचना करे या नहीं, यह गलत बात है, यह गलत बात है, यह ठीक नहीं है। उन्होंने उस अधिकार में अपनी निष्ठा दिखाई राम की सेवा में, इसलिए उन्होंने कहा जाजा अधिकारी निष्ठा परिकीर्तित। वो निष्ठा ही गुण है, जिसमें कोई निष्ठा ही नहीं अपने आराध्य के प्रति, वैसी निष्ठा नहीं तो साधन भजन में कैसे अग्रसर हो सकता है। इसलिए उनको गुण ही मानना चाहिए। हम लोग प्राकृत विचार के बहुत से लोग हैं, कनिष्ठ अधिकारी, हम समझते हैं अपने दृष्टिभंगी से विचार करते हैं जे ये उत्तम है कि कनिष्ठ है, ये विरोधी है अपने विचार से। हम उन विचारों को उद्धामन नहीं कर सकते, न गुरु को न वैष्णव को। इसलिए वहां पर मत पैक रहता है, मत वैशिष्ट उनमें नहीं होता, इस चीज को बतलाया इन्होंने। मतभेद और मत वैशिष्ट ये अलग अलग चीज है। प्राकृत में मत भेद हो सकता है, किंतु जहां पर अप्राकृत विचार आरंभ हुआ वहां पर मतभेद नहीं होता, वहां क्या होता है वैशिष्ट। वहां पर गुरु से शिष्य का कुछ वैशिष्ट हो सकता है। हमारे लोकनाथ दास गोस्वामी और उनके शिष्य विचार वैशिष्ट है, मतभेद नहीं। श्रील गौरकिशोर दास जी महाराज और श्रील प्रभुपाद में मत वैशिष्ट है,
मतभेद नहीं, मूर्ख सब ऐसा कल्पना करते हैं। कुछ लोग मूर्ख ऐसे भी हैं तत्व ज्ञानहीन, हम लोगों में भी मतभेद समझते हैं, इनमें हम में उनमें भेद है। मत वैशिष्ट जरूर रहेगा, ये तो उसकी जीव सत्ता का ये विचार है वैशिष्ट, किंतु मतभेद एक दूसरी बात है। मतभेद कहां होगा, जहां पर कि ये चार दोष इन्होंने बतलाया। क्या दोष? भ्रम प्रमाद करणार्थ पाठ ऑफ विप्रलिप्सा, ये हम लोग बाध्य हैं, किंतु भावावस्था जाने के बाद में ये सब चारों दोष नहीं होते, वो ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए उनमें मतभेद है। हम लोगों में मतभेद होना स्वाभाविक है, ये रहेगा ही, बाध्य हैं हम लोग। किंतु देखो भाई, विचार करके अपराध न करो। यही गुरु में और वैष्णव में मतभेद है ऐसा मत समझो, उनमें मत विशिष्ट समझना। ऐसे अपराध करके बहुत से लोग मर रहे हैं, मरो मत। उन्होंने इस विचार के लिए जगदानंद का विचार उपस्थित किया। अधिक रात हो रही है तो नहीं तो कल बतलाएंगे, आज रहने। अरे हमको नींद नहीं और भी विश्लेषण करके ना, आपको भी अभी प्रसाद पाने में गड़बड़ हो जाएगा। अब यहीं पर समाप्त करता हूं और कल बतलाऊंगा। हाँ, आज यही तक रहे, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, इसकी व्याख्या में और भी कितने रत्न निकलेंगे। वही लोग समझेंगे जो सौभाग्यवान लोग होंगे, साधारण लोग नहीं समझेंगे। गौड़ीय पत्रिका में प्रबंधों को छापना अच्छी तरह से विचार करके। कुछ लोग समझते हैं कि महाराज जी रस विचार कुछ नहीं जानते, ऐसा मत समझना, भूल हो जाएगा। खूब सावधानी के साथ में इसमें प्रवेश करने की आप लोग चेष्टा करें। यदि अभी तक मतभेद का जो विचार हृदय है, निकाल करके जमुना के उस पार बेल बन में फेंकाओ, यहां नहीं वृंदावन में फेंको, उधर में फेंको, और उन चीजों को ग्रहण करने की चेष्टा करो, नहीं तो बहुत विपद घटी दे विपद भारी। इसलिए आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। महाराज जी भी, इनका समय 7 बजे लेने का है प्रसाद, वो बहुत देर हो गई और हम भी घर में लग गए। अब कल हम इसके विषय में जो बातें रह गई हैं, हम लोग कल अनुशीलन करेंगे, विचार करेंगे। आप लोग खूब से ये अच्छी तरह से इन बातों को सावधानी से अपने जीवन में ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे, आप लोगों का कल्याण होगा। इसलिए मैं गुरु जी के चरण कमलों में, महाराज जी के चरण कमलों में और सब लोगों के चरण कमलों में यही निवेदन करके, जिनके विचारों को हम लोग श्रवण कर सकें, हम लोग पर ये लोग कृपा कर। कल हम लोगों का गोपीनाथ गौड़ीय मठ में पास ही श्री विग्रह प्रतिष्ठा होगी। हम लोग सबसे पहले पहले यहां हवन करेंगे और हवन के बाद में व्रत के अनुष्ठान जो होते हैं वहां पर पूर्ण करेंगे। खौल कार्य जिनको कराना है वो सब करा लेंगे सवेरे सवेरे, और यहीं पर हम लोग व्रत भंग करेंगे। जलपान यहीं पर, जलपान माने बाल्य भोग की सेवा यहीं पर होगी। अधिक अधिक मत प्रसाद लेना, फिर थोड़ी देर के बाद में यहां तो साधारण होगा, यहीं पर पेट भर जाएगा तो वहां पर चाव्य चुष्य लेहिय और पेय इत्यादि ठाकुर जी के भोग ऐसे ऐसे मिलेंगे, पछताएंगे पहले पीछे, इसलिए यहां पर पेट मत भर लेना। वहां जाकर के हम लोग विग्रह प्रतिष्ठा का दर्शन करेंगे वहां पर, और जो कार्यक्रम होंगे और शाम को 4 बजे से जैसे यहां पर सभा हो रही है, ठीक इसी रूप में विद्वत भक्ति वैष्णव ये सभा होगी वहां। इससे जो चूकेगा वो चूक जाएगा। बड़े सुंदर सब विचार होंगे, आप लोग सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे और उसमें जे दुबिबे से भदुपनीताई चांदे, उसमें डूबने की चेष्टा करो, तब वो बुझोगे। विचार करी ले चित्ते और नहीं तो कुछ नहीं समझ, कुछ में समझ में नहीं आएगा। इसके लिए उन्होंने बतलाया सिद्धांतों की बोलने से बहुत अधिक व्याख्या हो जाएगी, अब मैं कल इसके संबंध में बतलाऊंगा। आज यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। पंचा कल पालिने जीव दुखे सदार्ताय नाम प्रेम प्रदाय वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादि तरंगमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्न वृन्देन्मस्ते चरणारविन्दं। अंगश्यामलिन छटाभिरभित मंदीकृतेन्दीवरं जड्दं जागृतरोचि संविदध संपट्टं वरस्य श्रिया वृन्दारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरम् राधा स्कंद निवेशित जलभुजन ध्यायेन्दम्। तवैवास्मि न जीवामि त्वया इति विज्ञाय राधे संनय माम्। यत किंकरेषु बहुश खलु काकुबानि नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले जस्यापदारशनिधे दृशुभानुजाय तपकेलिकुञ्ज भवनं गमनमर्हि। गतकाले आमरा भजन रहस्य थेके अनुशीलन करेछि। हम लोग ने भजन रहस्य से पाठ किया कि जब जीव कृष्ण को भूल जाता है, माया उसे पकड़ लेती है, और जैसे पिशाची किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है, ठीक उसी प्रकार से जीव की गति होती है। कब जीव कृष्ण को भूल गया? अनादिकाल से ही भूला हुआ है। संसार में पड़े हुए जीव कब ये विमुख हुआ कृष्ण का इतिहास नहीं, इसलिए अनादिकाल कहा जाता है। किंतु कोई भी जीव इस चीज को भी याद रखेंगे, कोई भी जीव बैकुंठ से अथवा गोलोक ब्रज से नहीं आया, गिर करके बद्ध नहीं हुआ। जगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। जो उस जगत में चला जाता है वो फिर माया के बंधन में नहीं आता। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है तो ये धारणा इसलिए कि हमारी गुरु परंपरा के विचारों को, जीव गोस्वामी इत्यादि के विचारों को ये लोग नहीं जानते हैं, इसलिए जब ही जीव भयं दित्व्याद अविन्मेषतश्चा ईशात अपितस्य विपर्यो स्मृति तन्माया तो अबुद भक्तैक जेषां गुरु देवतात्मा। जब कृष्ण को वो भूल जाता है तभी संसारी काम नाई उत्पन्न होते हैं या बस नाई उत्पन्न होती है, उस समय जीव की गति और मति विभ्रम हो जाती है। उस समय ये संसार को ही सच मानकर, इसी को प्रत्यक्ष मानकर और इसमें पतित हो जाता है, इसलिए उसको भय होता है। इसके पहले भय नहीं, उस जगत में कोई भय नहीं है, इस जगत में आने से ही तरह तरह के भय शंका, उसी लिए चार प्रकार के अनर्थ बतलाए। सबसे पहले तत्व विभ्रम या स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। पहले ही कृष्ण से विमुख हम हो जाते हैं और इसके बाद में तरह तरह की असत तृष्णाएं उत्पन्न हो जाती है, तब हृदय दुर्बल हो जाता है, तब अपराध हो जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने स्वरूप भ्रम को बतलाया। स्वरूप भ्रम भी चार प्रकार का बतलाया, सत्तत्व परतत्व साध्य साधन तत्व विरोधी विषय चैव तत्व चतुर्विद, तत्व भ्रम चतुर्विद। सत्तत्व में जब भगवान से वो चित्त हो जाता है, जखनी जीव भगवान से के विमुख हो जाए तो उसको अपने तत्व में भ्रम हो जाता है, जीव तत्व के संबंध में भ्रम हो जाता है। जब मैं कौन हूं, कोई कहता है हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, कोई ये संसार का अभिमान लेकर के कहते हैं कि मैं यही हूं, मैं किसी का पति हूं, पुत्र हूं, भाई हूं इत्यादि, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, कभी देवता हूं, कभी गंधर्व हूं, कभी रंक हूं, गरीब हूं, दरिद्र हूं, कभी पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि, जिस योनि में जन्म ग्रहण करता है उसी को वो मान लेता है जो मैं हूं। और कुछ कहते हैं ये नहीं, ये भ्रम हुआ है, ये असल में ब्रह्म ही है। तो भ्रम किसको हुआ, जीव को। तो भ्रम होने के पहले ही जीव था ना, भ्रम होने के बाद में ब्रह्म जीव हुआ। जी गोस्वामी ने उन लोगों से पूछा, भ्रम किसको, जीव को हुआ है ना ब्रह्म को। जीव नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो लोग कहते हैं जीव नाम की कोई चीज नहीं, तो फिर भ्रम किसको हुआ, तो ब्रह्म को। तो ब्रह्म को भ्रम हुआ तो ब्रह्म को भ्रम होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ब्रह्म तो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, उसको तो कभी भ्रम नहीं हो सकता। तो किसको हुआ, जी गोस्वामी कहते हैं यदि कहो जो ब्रह्म को हुआ तभी तुम गए, और यदि कहो जो जीव को भ्रम हुआ तभी तुम्हारे, जो कुछ भी तुम कहो तुम्हारेगा। इसलिए तुम्हारा विचार ये गलत है, ये भगवान का अंश है। कैसा अंश, विभिन्न अंश है। कैसे विभिन्न अंश है, जब ब्रह्म स्वरूप शक्ति से अपनी अनंत शक्तियों से समन्वित होते हैं, युक्त होते हैं, उस समय उनका जो अंश होता है उसको स्वांश कहते हैं। ठीक से समझो, जखन परब्रह्म निजे स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, माया शक्ति इत्यादि अनंत शक्ति द्वारा युक्त थाके, तखन तार जे अंश है ताके बोले स्वांश, जे रकम राम बलदेव इत्यादि अवतार सब। और जखन ब्रह्म निजेर एक अघटन घटन पटेशी शक्ति द्वारा एमन करें जे तार तखन शक्ति गुली के एक ली आ मात्र तटस्था शक्ति संगे युक्त हो जाए, तखन ओई जे अंश ताके बोले विभिन्न अंश। ममईवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ममईवांश जेखने बोली छेन तखन केवल शक्ति द्वारा ही इटा हुई छे, तटस्थ शक्ति थेके जीवेर प्रकाश एटी बोलते पारा जाबे। आर कृष्ण से प्रकटित हुए एउटा बोला जाबे, तखन की बोला जाबे एइटाके विभिन्न अंश। बिना कृष्णर संगे युक्त हुए तटस्था शक्ति थेके केवल जीव होते पारे ना, तार मध्ये इच्छा शक्ति कोथा थेके आसबे, এই জন্য ইচ্ছা শক্তি হচ্ছে নিজের কৃষ্ণের। আর তার মধ্যে লেগে গেল কি, বললেন যে সে আমার সঙ্গে কেবল তটস্বা শক্তি যুক্ত হোক, অর্থাৎ জীব শক্তি। আর তার থেকে যে অংশ হলো তখন হলো বিভিন্ন অংশ, এইকে বলছেন মময়ীবাংশ জীব লোকে জীব ভূত সনাতন। আর বললেন কি তটস্বা শক্তির পরিণতি হচ্ছে জীব, এর মধ্যেই সামঞ্জস্য করতে হবে। কৃষ্ণ আছেন কিন্তু তার শক্তির দ্বারা, যেরকম উদাহরণ দিলেন উদাহরণ মৃগগন্ধ, মৃগ অমৃত গন্ধ কস্তুরি, কস্তুরি থেকে তার গন্ধ পৃথক না, কস্তুরি মানে নিজে পরতত্ত্বকে, আর তার গন্ধ মানে তার শক্তি, কোনদিন অলগ হবে না। কিন্তু এক রকমের একটা চিন্তা করলে অলগও আছে, পৃথক ভি হ্যাঁ, কেসে পৃথক হ্যাঁ, কস্তুরি তো ইহা রাখ দো আর উসকা গন্ধ সব জায়গা মে ফেল যায়, কস্তুরি তো নেই গই ওহা 25 হাত দূর, 26 হাত দূর, 10 গজ 15 গজ দূরে তার গন্ধ তার চলে যাচ্ছে, কিন্তু কস্তুরি যেখানে সেখানে, এই জন্য তাহারকে পৃথকও আছে অপৃথকও আছে। সূর্য তাহার রশ্মিগণ তাহার তাপ, জল তাহার তরলতা, এরকম প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাহার একটি স্বাভাবিক একটা জিনিস আছে, শক্তি আছে। তার থেকে পৃথক না তার থেকে অপৃথক এই চিন্তা করতে পারা যায় না। এই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন অচিন্ত ভেদ অচিন্ত অভেদ। তাহলে তোমরা বলছো কিরকম, শাস্ত্রে কিরকম লিখা গেছে যদি বুঝতে নাই পারা যায়, বলছে নিজে বুদ্ধিতে বুঝা যাবে না, এটা কিসে বুঝে যাবে, কেসে সমঝা যায়গা, শাস্ত্র বুদ্ধি গম্য, পরম্পরাগত বিচার গম্য, গুরু পরম্পরা থেকে যে আমনায় ধারা আমাদের আসছে ও তো দ্বারা গম্য, এছাড়া নিজে থেকে গম্য না। এই জন্য অচিন্ত, অচিন্ত মানে কোন চিন্তাই করতে পারা যাবে না। তাহলে বলা হলো কেমন, কেসে কহা গিয়া এই যে ঠিক নেই, ইসলিয়ে হ্যাঁ কেসে সমঝা যায়গা, ইয়ে শাস্ত্র বুদ্ধি গম্য। আর বিশেষ করকে পরম্পরাগত যে হম লোক বিচার হুসকে দ্বারা জানা যা সকা, এসে নেই জানা সকা। যে অভেদাভেদ যে বতলায়া তত্ত্ব জীব আর ইয়ে জড় জগৎ, ইয়ে শক্তি সে শক্তিমান কা ভেদ আর অভেদ, শক্তি সে জীব সে নেই কেবল, ও শক্তি কে অন্তর্গত মে জীব ভি আ যাতা হ্যায় জগৎ আ যাতা হ্যায়। জগত কে সাথ মে জীব কে সাথ মে ব্রহ্ম কা অচিন্ত ভেদ আর অভেদ। নিবাক লোকো কা ভি এসা হ্যায়, উনকা কহতে হ্যায় স্বাভাবিক ভেদাভেদ, আর হম লোকো কা অচিন্ত। স্বাভাবিক মে থোড়া সা ইয়ে বহুত গহন বিষয় হ্যায়, স্বাভাবিক অচিন্ত স্বাভাবিক ভেদাভেদ মানে ক্যা ক্যা উসকো কহতে হ্যায়, হমারা वहां से वैशिष्ट क्या है, भेद क्या है हम लोगों का निम्बार्क संप्रदाय से। निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं कि ये जीव और जगत सब कृष्ण से ही परतत्व से प्रकटित हुआ है। हमारे जीव गोस्वामी इत्यादि तत्वाचार्य कहते हैं ऐसा नहीं ब्रह्म भिखारी हो जाएगा, ब्रह्म से यदि निकला है इसलिए ब्रह्म से नहीं निकला, ब्रह्म की शक्ति द्वारा ये प्रकटित हुआ। उदाहरण दिया चिंतामणि से कोई चीज प्रसूत होती है, चिंतामणि अविकृत रहती है, उसका विकार नहीं होता, किंतु उससे निकल जाता है बहुत सी चीज। उदाहरण के लिए हमने देखा है हमारे घर गांव में एक तेजी विवाह रहते थे, बहुत अच्छा आदमी था वो, कमरी कम अच्छा में गया, कमी आसाम में गया और वहां से मंत्र सीख करके आया। हम लोग का वो काका लगता था, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, जब वो गांव में आते थे तो हम लोग बच्चे जितने थे गांव भर के उसको पकड़ लेते थे, चाचा जी मिठाई खिलाना है, जिलेबी हम खाएंगे, अच्छा जिलेबी खाएगा ठीक, तो वो ऐसा ऊपर में देखता और ऐसे ताली बजाता मिट्टी ले लेता, और ऐसे कर करके हाथ ऐसा कर देता है जिलेबी अकबर धारा प्रवाह से गिरने लगती और हम लोग उठाते लगते उठा करके मुख लेते देते देते जो कुछ नहीं क्यों गिर रही है हम जिलेबी देख रहे हैं। एक दिन हम लोगों ने पकड़ा चाचा जी हम लोग रुपये लेंगे आपसे नोट लेंगे। नोट लेगा तुम? अच्छा ठीक। बस ऐसे किया और ऐसे करके से बस ऐसे किया और नोट ऐसे हाथ का नोट झक 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 गिरने लग गया और जब हम लोग पकड़ने जाए देखा जी कुछ नहीं। एक दिन की बात है एक गांव में बारात आई और बारात में पूरी कचौड़ी लड्डू इत्यादि बना था। शाम को वो बारात आनी है ये उसके घर गया अभी बारात नहीं आई थी या बारात आ गई थी अभी भोजन नहीं हुआ था। ये महाशय जी गए उनसे कहा जी प्रभु हमको बड़ी भूख लगी है कुछ खाने के लिए दे दे। तो खाने के लिए कैसे दे दे अब तो तुम्हारे घर में लड्डू पूड़ा पकवान ये सब बना हुआ है हमको थोड़ा सा दे दो कम हो जाएगा। नहीं भाई जब तक बारात नहीं जिमेगी तब तक वर और यात्री नहीं जिमेंगे हम नहीं देंगे। नहीं देगा तो देखो इसको तुमको पछताना पड़ेगा। अरे जाओ जाओ तुम। वो चला गया थोड़ी देर के बाद में देखा ये भंडार में कुछ नहीं। ऐसे ही जाति साधारण रूप में मंत्र के द्वारा देखा जाता है मणि के द्वारा देखा जाता है किसी चीज को प्रसव करके भी उसका विकार नहीं होता। इसी तरह से भगवान की शक्ति द्वारा भगवान से जीवे ये सब अखिल विश्व जीव और जड़ जगत निकला है किंतु भगवान से भेद भी है ब्रह्म विकृत नहीं होता। इसलिए शंकराचार्य ने इस सब मतों का खंडन किया था हमारे जीव गोस्वामी ने उनके सब विचारों को खंडन कर दिया ज्ञान तक निम्बार्क इत्यादि के विचारों को भी उन्होंने खंडन किया है। बलदेव विद्याभूषण ने पीछे से गोविंद भाष्य में इन सब विषयों का प्रतिपादन और विरोधी मतों का खंडन उन्होंने किया है। तो अपने स्वरूप में भ्रम नहीं होना चाहिए यही होना चाहिए मैं कृष्णदास हूं जिवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। अब कृष्ण को भूल करके हम माया के दास में पड़े हुए हैं। माया के दास का मैं राष्ट्रपति हूं तो माया का दास का प्रधानमंत्री हूं माया का दास कहां मैं तो सबका मालिक हूं निद्रा के वश में अपने लस्ट के वशीभूत अपनी कामनाओं के दास बने पड़े प्रतिष्ठा के दास जीवन मरने के लिए बाध्य उनके हाथ में कुछ नहीं केवल अभिमान। इसलिए कहते हैं अपने पक्ष में यह बात ठीक रहना चाहिए जो हम कृष्ण दास हैं कृष्ण को भूलने से हमारी ये दुर्गति है ये हमारा निवास नहीं है। दो दिन के लिए किराए पर भगवान ने दिया है यह शरीर और मन यदि इसका शुद्ध व्यवहार करके भगवान भजन करके चले जाओ तब तक तो ठीक है और जिन लोगों ने इसका शुद्ध व्यवहार नहीं किया जबरदस्ती निकाल लेंगे और इस शरीर से निकाल करके पार कर देंगे जबरदस्ती और दंड स्वरूप ये कहेंगे एक सुई और धागा भी नहीं ले जाएगा इस जगत से एक केश भी शरीर भी कुछ नहीं जाएगा ऐसा वो दंड देगा। रोते कलपते रह जाएंगे कोटि कोटि जन्म हमारा बिगड़ जाएगा। इसलिए इस जन्म का एक अतिरिक्त हमारा कोई भी कर्तव्य नहीं है। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास हम लोग सब कपास ओट रहे और इसीलिए परस्पर भाई भाई शत्रु हो रहे हैं और शत्रु भी मित्र हो रहा है किंतु असल में कुछ नहीं। इसलिए अपने तत्व में भ्रम होता है ये हम लोगों को नहीं होनी चाहिए। परतत्व में भूल हो जाता है। परतत्व क्या है काली जी हैं दुर्गा जी परतत्व हैं न गणेश परतत्व हैं न मैं खुद ही परतत्व हूं न कृष्ण परतत्व हैं न द्वारकाधीश हैं अरे सभी एक हैं मूढ़ी मिश्री सब एक दर जो कृष्ण है वही काली है जो ब्रह्मा है शंकर जी और यहां तक कि मैं भी वही ब्रह्म हूं
दूसरा कोई तत्व नहीं। यह गलत है, हम ब्रह्म नहीं हैं। यदि हम ब्रह्म रहते तो गुरु जी कहते थे हम लोगों के तत्विद तत्तम जगज्ञानम अद्वयम ब्रह्मे थी परमात्मे थी भगवानी की शब्द थे। इस श्लोक का बदंति तत्विद तत्तम, तत्विद लोग ऐसा कहते हैं, तत्व को जानने वाला ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? परतत्व अखंड ज्ञान स्वरूप वो तत्व है। बदंति तत्विद तत्तम जग ज्ञानम अद्वयम, अद्वयम वहां पर बतलाया। अद्वयम का क्यों कहा? यदि दो ही नहीं रहता तो वो अद्वय क्यों कहते? किंतु दो होने पर भी एक के अधीन दूसरा है, उसकी सत्ता इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उसके अधीन जीव और जगत है, स्वाधीन कुछ नहीं है। इसलिए वो परतत्व कैसा है? असाम्य अतिशय असमोद्भ, उसके समान कोई नहीं है, उसके बराबर भी कोई नहीं है, किंतु अद्वितीय है। अद्वितीय योद्धा लाखों में से एक होता है, ऐसे ये लाखों जीवों में से यही परतत्व है। इसलिए ब्रह्म कहने पर भी परब्रह्म होता है, इसलिए ब्रह्म से परब्रह्म श्रेष्ठ है। आत्मा से भी परमात्मा होता है, इसलिए आत्मा से भी ये आत्मा परमात्मा श्रेष्ठ है। किंतु भगवान से परम भगवान ये नहीं होता, स्वयं भगवान हो सकता है। इसलिए ब्रह्म आत्मा और भगवान एक नहीं है, इसमें वैशिष्ट है, इस चत को जानना चाहिए। इसलिए कृष्ण ही आराध्य है, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई आराध्य नहीं है, किंतु शक्ति समन्वित कृष्ण, इसलिए शक्ति श्रीमती राधिका जी पराशक्ति है, लादिनी शक्ति है, उनके साथ में संयुक्त। जो लोग शक्ति और शक्तिमान नहीं मानते, केवल शक्तिमान मानते हैं या शक्ति मानते हैं, वो असुर कहलाते हैं। रावण कंस इत्यादि जितने थे सब असुर थे, केवल शक्ति मानने वाले थे, शक्तिमान नहीं मानते हैं। इसलिए निर्विकार निर्विशेष कहते थे ये हमारा आराध्य नहीं है। इसलिए पक्ष में भूल नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए, साध्य और साधन में भ्रम नहीं होना चाहिए। यह भी एक भ्रम है, स्वतत्व परतत्व और साधन और साध्य। यदि इस विषय में अधिक जानना है तो चलो हम लोग चले महाप्रभु और जहां राय रामानंद जी विचार कर रहे हैं साध्य साधन का, वहां चलो, उसमें चूड़ांत विचार किया गया है। साधन क्या है, साध्य क्या है? पहले साध्य स्थिर होगा तब साधन होगा, पहले साधन स्थिर करके साधन नहीं होता। पहले हमको किस चीज की जरूरत है, आवश्यकता क्या क्या है, और तब फिर उसको पाने के लिए उपाय क्या है। हमको धन कमाना है, लक्ष्य रखा, अच्छा तो अपने बेटे को पढ़ाओ, बेटे के पढ़ाने से क्या होगा, ऐसी चीज पढ़ाओ जो कि उसे धन कमा सके, ऐसी चीज करो तो उस विद्या से धन को पाएगा। तो इसलिए धन को पाने के लिए शिक्षा इत्यादि साधन हुआ। ऐसे कोटि कोटि साध्य और साधन है, जो अंतिम साध्य है वो है ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर अखिल रसामित सिंधु सर्वशक्ति समन्वित, उन्हीं से बद्ध और मुक्त जीव निकलते हैं। एक नित्य बद्ध अतत अनादि बद्ध और एक नित्य मुक्त, नित्य मुक्त उनकी सेवा करते हैं। और ये बद्ध जीव जो है ये दो प्रकार के, एक उन्मुख और एक विमुख। उन्मुख वाले क्रमशः साधन भज में आप लोग सभी उन्मुख हैं, हम लोग सभी उन्मुख हैं, भगवान की तरफ में चल रहे हैं, कोई कम या अधिक। और विमुख वो अलग है। इस उन्मुख में भी भक्ति विनोद ठाकुर ने, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने पांच प्रकार के बतलाए, आच्छादित चेतन, मुकलित चेतन, मुकलित चेतन, विकसित चेतन, पूर्ण विकसित। मुक्त लोग जो है वो पूर्ण विकसित, मुक्त में भी पूर्ण विकसित में भी फिर विचार है, विकसित में, विकसित, पूर्ण विकसित, पूर्णतम विकसित। ब्रज वाले जितने हैं ये पूर्ण विकसित, और उन ब्रज में भी पूर्ण विकसितों में भी फिर विकसित, पूर्णतम विकसित, पूर्णतरम विकसित, अपूर्णतम विकसित। रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जितने हैं ये सब पूर्णतम विकसित जीव है, जो कृष्ण की सेवा, राधा कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं। ये सब साधन और साध्य तत्व जानना चाहिए, इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। भक्त ही एकमात्र साधन है, और साध्य है कृष्ण प्रेम, कृष्ण नहीं, कृष्ण का मिलना ही साधन, ये साध्य नहीं है कृष्ण प्रेम। क्यों? कंस ने भी, रावण ने भी, तृणकस्तु ने भी भगवान को पाया किंतु युद्ध किया। इधर जिसको प्रेम भक्ति है वही उनको परिपूर्ण रूप में उनको पा सकता है, उनके स्वरूप को समझ सकता है। इसलिए साध्य और साधन में भी बिना भक्ति के भगवान को नहीं पाया जा सकता। इसलिए शास्त्रकारों ने लिखा, भक्ति रमैनंग दर्शयति, भक्ति रमैनंग नयति, भक्ति वशो पुरुष, भक्ति रेव भूयस। बिना भक्ति के नहीं पा सकते। सुखदेव गोस्वामी शंकर जी कहते हैं, अहम वेद्मि सुखो वेत्ति, व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न चती क्या। मैं नृसिंहदेव के प्रसाद से मैं समझता हूं कुछ, नृसिंहदेव की का प्रसाद होता मैं जानता हूं, नृसिंह नहीं, मैं भगवान की कृपा से। कैसे? बिना भक्ति के भागवत नहीं हो सकता है जानना, इसलिए उसके अनुगत जो शास्त्र हैं वो भी शास्त्र हैं। हमारे गोसाइयों के शास्त्र परिपूर्णतम शास्त्र हैं। यदि ये सब तत्व को जानना है तो हमारे गोस्वामियों के ग्रंथों को, विशेष करके जीव गोस्वामी के ग्रंथों का अवलोकन करो। और एक है विरोधी भ्रम। विरोधी भ्रम माने हमारे लिए विरोधी क्या है? जैसे अभी इस समय हम लोग सोचते हैं एक दो चार पांच छह दस बीस लाख रुपया मिल जाए, मिल जाएगा तो क्या करेंगे? एक सोने का मंदिर बना दें, उसमें ठाकुर जी को रखें, वैष्णव को बुला करके सेवा करें। कल बतलाया था इसी को, ये क्या नारद जी का यह भाव, ये अभी मूर्छित कसाय, ये मूर्छित कसाय है। एक हिरण के बच्चे को रखने से कहां भरत जी चले गए? इसे ये सब मत मांगो, ये विरोधी तत्व है भाई, ये बतला रहे हैं। भाई हम प्रचार करेंगे, विशेष करके महिला कहते हैं कि हम पुरुष लोगों में प्रचार करेंगे, और पुरुष क्या कहता है कि हम महिलाओं में हम प्रचार करें। भाई ये भी माया है, इसको भी समझो, जिनका अधिकार है वो करेंगे, हम लोग डूब मरेंगे, ये भी विरोधी भाव। यदि भजन करवा, यदि इच्छा ना गौर, यदि प्रणय रखते चाओ गौरांग, तबे छोटो हरिदास कथा थके जनो मने। तो यदि महाप्रभु जी को प्रश्न किया जाए कि आप वो सिखी मैती की बहन माधवी देवी को आधा आधा में क्यों रखा, उनसे हरि कथा क्यों बोलते हैं, गंगा माता ठाकुरानी जी को क्या कहेंगे, माधवी देवी को क्या कहेंगे, हेमलता ठाकुरानी जी को क्या कहेंगे, मीराबाई को क्या कहेंगे? जीव गोस्वामी से उसने पूछा, जीव गोस्वामी का हमारे पास में कोई नहीं आता है, मत आना, कोई कोई स्त्री नहीं आएगी। तो उसने वहीं से कहा, मैं तो समझती थी ये ब्रज में एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण, आज द्वितीय कौन पुरुष यहाँ पर पैदा हो गया। जी गोस्वामी ने बड़े प्रेम से, हाँ सब ठीक, तुम जो लेकर के उसको मंत्र इत्यादि किया, किंतु मंत्र लेने से सब इतना नहीं किया, इसलिए द्वारका में चली गई और वहां पर द्वारकाधीश में मिल गई ब्रजेंद्र नंदन की श्रीमती राधिका के अनुगत में, भजन उनका नहीं पूर्ण हुआ। इसलिए विरोधी तत्व को समझो, ये विरोधी तत्व क्या है, संसारिक जितनी भी चीजें हैं ये भगवान की सेवा की उपकरण है, ये बात ठीक है। प्रत्येक चीज इस विश्व का भगवान की सेवा का उपकरण है, हम लोग भी भगवान की सेवा के उपकरण है, जो कुछ इस जगत में है महिलाएं भी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सभी है, किंतु इसको जो व्यवहार कर सकता है उसके लिए हम लोग के संप्रदाय में है। एक समय कोई व्यक्ति थे यहाँ के बड़े विद्वान आदमी, भक्त लोग, ऐकांतिक भक्त, गोपाल जी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। उन्होंने देखा जी एकादशी के दिन पान खा करके आए हैं। मैंने कहा जी आज पान खा करके आए एकादशी के दिन, तो प्रभु ठाकुर जी को अर्पण किया था, राधा बल्लभ जी को अर्पण किया, तो ये कहां फेंक दूं इसलिए मैंने ली। अच्छा तो तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया आज? हाँ। क्या क्या भोग लगा? पूरी कचौड़ी इत्यादि सब लगा। तो तुम उसको क्या फेंक दिया? तो नहीं, तो क्या किया? मैंने प्रसाद पाया। तो एकादशी के दिन भी प्रसाद नहीं पाया? अच्छा अच्छा ठीक, जाओ आज से मत कहना कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, और मैं भी आज से भूल गया कि तुम हमारा शिष्य है, अब ये संबंध नहीं होगा। वह सदा के लिए उनको हर संबंध वस्तु तो है। हमारे गोस्वामी जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के इसकी अथॉरिटी है, उन्होंने क्यों उनको प्रत्याग कर दिया, ये सब विचार करना चाहिए। किंतु जब अधिकारी हो जाएगा नित्य लीला में प्रवेश करने लायक, तो वहां पर कृष्ण के लिए जो पान है वो खा सकता है, खिला सकता है, मधु भी पान कर सकता है, मधु भी पान करा सकती है, वहां का विचार दूसरा है। और वो क्या चीज है अपराकृत सभी, इसलिए ये सब का विचार करना चाहिए। हमारे भजन में विरोधी क्या है, अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, कभी हमने साधन को गलत साधन तो नहीं चुन लिया? जो हरि भक्ति का विरोधी है उसको तो हमने नहीं चुन लिया साध्य और साधन के रूप में। इसलिए ये चार प्रकार के भ्रम साधु संघ में तत्त्वज्ञ गुरु के साथ में ये सबको दूर कर देना चाहिए। अभक्त विनोद ठाकुर जी कहते हैं असत तृष्णा अही को अहतना पारत्रिकेशु चैसना अशुभा भूति बांछा मुमुक्षा ची असत तृष्णा चतुर्विध विधा। अही माने लौकिक, लौकिक जितनी प्रकार की आकांक्षाएं हैं उनको भोग करने की, ये असत तृष्णा है। जो कुछ लौकिक चीजें हैं मैं इसको भोग करूंगा, सुंदर रूप देखूंगा, सुंदर टेस्ट करूंगा, सुंदर चीज खाऊंगा, सुंदर चीज कानों से सुनेंगे, कोमल चीज अपने त्वचा से स्पर्श करेंगे, मरेंगे हम लोग। प्रदीप को देख करके कीड़े सब जिनको पंख उग जाते हैं चींटियों को, वो पतंगे आग में जल मरते हैं, सोचते हैं ये हमारे खाने की वस्तु है। हाथी हथनियों के स्पर्श से सारा जीवन के लिए जाल में पड़कर अपना स्वतंत्रता खो देता है। मछली एक जीवा के लालसा से अपने प्राणों को विसर्जित कर देती है। हिरण कान के श्रवण की ध्वनि से वशीभूत होकर के अपने प्राणों को कैसे गवा देते हैं। अरे मुंहों का तो एक एक है और हम लोग कुछ दस इंद्रियां हैं, दसों दस से खाए कर बड़ा भारी मुश्किल है। इसलिए इन इंद्रियों को विजय करके भगवान में भजन करना ये बहुत कठिन बात है। कभी कभी हम नहीं चाहते हुए भी अवश्य होकर के इनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। हरि गुरु वैष्णव को छोड़ देते हैं, पागल कुत्ते जैसे हो जाते हैं। इसलिए गुरु वैष्णव से हा सौत दामोदर, हा राय रामानंद प्रभु, हे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, आप लोग उन भक्ति पथ के सेनापति हैं, आप हमारी रक्षा करें। गुरु वर्ग से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु वैष्णव का संग मत छोड़ो, चाहे लाख हो जाए, भजन हो और न हो, गुरु वैष्णव का अनुगत्य मत छोड़ो। यदि छोड़ा, जी समय छोड़ेगा, माया तुम्हें पकड़ लेगी। इसलिए हम उनकी इस जन्म में सेवा करते रहेंगे, उनके साथ नहीं छोड़ सकते हैं, जो कुछ हो जाए, बस इतना भी हो जाएगा हमारा कल्याण हो जाएगा। इस जन्म नहीं दूसरे जन्म हम भजन कर लेंगे। इसलिए वैष्णव का संग किसी भी हालत, जितना क्रोध हो, जितना जो कुछ हो जाए, वैष्णव का संग मत छोड़ो, उनका अनुगत्य मत छोड़ो, नहीं तो सर्वनाश अवसंभावी है। इसलिए ऐहिक ऐसना यदि भजन करना चाहते हो तो छह प्रकार के ये वेग हैं, मन वेग, क्रोध वेग, जीवा वेग, उदर वेग, उपस्थित। इन वेगों को जो सहन कर सकता है वही जगत गुरु है। इन वेगों को कैसे समर्थ होंगे हम इनको शासन करने में, बिना गुरु से वाता नहीं होगा। वैराग्य के द्वारा कुछ कुछ मन पर कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ कुछ, और उपायों से, साम दाम तितिक्षा इत्यादि के द्वारा, वैराग्य के द्वारा और शब्द के द्वारा पेट पर भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जीवा पर भी कुछ कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, किंतु गुरु सेवा के द्वारा अखंड रूप में सभी चीजों का दमन हो जाता है। वैष्णव की सेवा से सभी चीज का दमन अपने आप हो जाता है। यह समझो, उपमा देकर के कहा गया, जैसे सूर्य है और नीचे कमल है, पानी के अंदर में यदि कमल है तो सूर्य उसको खिला देगा और सुगंध बढ़ा देगा और प्रस्फुटित हो जाएगा, और नीचे यदि पानी नहीं है और सूर्य हुआ, उगता जाएगा सूर्य ऊपर की तरफ में, गर्मी बढ़ती जाएगी और उसे सुखा करके चूर मार कर देगा, जो पोषण करता है वही उसका शत्रु होकर के सुखा देगा। इसलिए भगवान सूर्य स्थानीय है और गुरु वैष्णव है जल स्थानीय। इनकी सेवा करते हुए भजन हम करेंगे तो वो हमको कृष्ण खिला देंगे, महाप्रभु जी खिला देंगे, प्रस्फुटित कर देंगे, हमारा भजन श्रेय हतैर वचंद्रिका वितरण कर देंगे। और नहीं, यदि गुरु वैष्णव का संपर्क नहीं, अनुगत नहीं, हम अकेले भजन कर लेंगे तो गिरिराज गोवर्धन कृष्ण स्वयं श्रीमती राधिका भी जला करके खा कर देंगे, ये समझ रखो। इसलिए इन सब चीजों को याद रखो, अनुगत्य वैष्णव धर्म अनुगत्य काम, अनुगत्य में रह करके, ये मत समझो कि हमारे गुरु जी मर गए हैं, वो नहीं अब है, मत समझो, गुरु कभी नहीं मरते हैं, कृष्ण जैसे नहीं मरते हैं। बहेलिए ने बाण से कृष्ण को मारा, वो कृष्ण मर नहीं गए, अर्जुन के बाणों से, भीष्म पितामह के बाणों से उनका कुछ नहीं हो गया, और आग खा लिया, विष खा लिया, विष में डूब गए काली हृदय में, कुछ नहीं का हुआ, ऐसे ही समझो। इसलिए हमारे रक्षक वैष्णव लोग और गुरु हैं, गुरु और वैष्णव के अतिरिक्त जिसका और कोई रक्षक है, समझो जी गया, उसका बेड़ा पार खत्म हो गया। इसलिए गुरु वैष्णव में इस प्रकार की रख करके इंद्रियों को सहज ही विजय कर सकते हैं, कोई चेष्टा नहीं करनी होगी, अपने आप हो जाएगा। और भूति वांछा, भूति वांछा माने क्या, विभूति, योग अभ्यास के द्वारा कोई एक योगी है उससे जाकर के विभूति, विभूतियां बहुत प्रकार की हैं, जिनमें लघिमा गरिमा प्राप्ति, ये सब वशीकरण, वशीकरण कर देगा, और जो चाहेगा तुम मर जाओ मर जाएगा, जीवित हो जाओ जीवित हो जाएगा, ये सब सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों के पीछे मत पड़ो, ज्योतिष विद्या सीख करके सब जहन्नम गए। वैष्णव जो करते हैं हरिनाम का आश्रय, गुरु की सेवा करते हैं, यदि वो ज्योतिष का चर्चा की तो इस काल उ काल दोनों काल सब खोवाई लो, खाई लियो अपना माथा, मत जाओ इधर में। अरे भगवान राम सर्वशक्तिमान है, उसको छोड़ करके ये ज्योतिष की चर्चा करना और ताबीज और गंडा इत्यादि धारण करना ये भक्ति का विरोध है। मत जाओ उधर में, ज्योतिष का पुस्तक चर्चा मत। तो हमारे हम जानते हैं कि हमारे मठ में बहुत से लोगों के पास में ज्योतिष की पुस्तक है, वहां देखना सीख रहे हैं। मत सीखो, जहन्नम में जाएगा ज्योतिष जो जानने वाले हैं। अरे वही तो भूखों मर रहे हैं, जिसके पास में जाएगा बड़े बड़े ज्योतिषियों को जानता उनको खाने को नहीं मिलता, वो तुम्हारा क्या कर देंगे ज्योतिष वाले। इसलिए यदि कुछ होगा तो हरिनाम के द्वारा होगा। अच्छे श्लोक का जो चाहते हैं कुछ नहीं चाहते, अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदार भी तिप्रेन भक्ति जोगेन जजे तपुरुषम। हरिनाम के द्वारा सब कुछ हो जाएगा भाई, योग सिद्धि। जो हरिनाम एकांतिक रूप में करता है उसको क्या होता है, योग सिद्धि इत्यादि सब उसके पीछे पीछे हाथ जोड़ करके रहते हैं। क्या है श्लोक, भक्ति सही स्थित करा यदि सात दैव न फल दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम गतया समय। समय की प्रतीक्षा करते हैं ये सब, किसकी, भक्त की। भक्त कभी कामना करे सिद्धि और ये सभी चीजें, ये कहते नहीं नहीं हमको जब भागो भागो यहां से, और वो पीछे पीछे समय की प्रतीक्षा करते हैं। कैसे, जैसे कृष्ण अपनी लीला में उस समय ऐश्वर्य को अपना छिपा करके रखा है, किंतु ऐश्वर्य शक्ति उनके पीछे पीछे दौड़े तो प्रभु की इच्छा हो जाए। कृष्ण ने सोचा मैया हमें मत बांध, मैं खेलूंगा कैसे, मैं बच्चों के साथ में खेल नहीं सकता, मैया मुझे मत बांध। यही समय की प्रति, इतने में जो माया ने शक्ति ने आकर के झट ऐसा किया, कमर भी नहीं बढ़ा और रस्सी भी बढ़ी नहीं जितनी की थी उतनी ही, और उसी में कृष्ण बढ़ गए, ओखल को भी बांध दिया। इसलिए भक्ति से बढ़कर के क्या हो सकता है, इसलिए भूति की वांछा मत करो, भक्ति को नष्ट कर देगा, भक्ति क्या नष्ट कर देगा यही इच्छा बुली। और मुमुक्षा मुक्ति की इच्छा मत करो, ये भक्ति विरोधी है। मुक्ति तो अपने आप वैष्णव को हो जाती है इसी शरीर में, इसी शरीर में हो जाती, कैसे, पिछों से आना सख्त हो गए मुक्ति हो गई। इसलिए मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है, और उस जो भगवान में मिलने की मुक्ति कहते हैं वो भक्ति का विरोधी है, उसका लोक पर लोक समस्त नष्ट हो जाएगा। इस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए। ये चार प्रकार की असत तृष्णाएं हैं, संसारी लौकिक कोई वस्तु, रुपया पैसा धन संपत्ति पद गौरव प्रतिष्ठा, ये सब चीजें मत रखो, किंतु यही मुश्किल है छोड़ नहीं। रघुनाथ दास को स्वामी कहते हैं कि यह गधही का मूत्र है, मन हमको मत जलाओ और उसे स्नान करके और अपने जीवन को बर्बाद मत करो, इसलिए इस सब चीजों को दूर करो। भक्ति मुक्ति स्पृहा जावत हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख शास्त्र कथम अभ्युदयो भवे। भक्ति बड़ी कोमल अंगल है, बड़ी कोमल अंगों वाली, बड़ी सुकुमार है। इसलिए जहां भक्ति और मुक्ति की इच्छा आती है, अरे मुक्ति की इच्छा को पिशाची कहा, इसमें बहुत सी बातें हैं। मुक्ति पिशाची कैसे है, मुक्ति पिशाची नहीं है, मुक्ति की इच्छा जो है ये पिशाची। मुक्ति तो होना ही चाहिए हम लोग को, अग्रह मुक्ति तबे सर्व बंधन है तबे हरि वैसे कृष्ण, किंतु मुक्ति की इच्छा मत करो। वो तो भगवान नाम करने से, भजन करने से, ब्रज में वास कर अपने आप चुटकी बजाते आ जाए, है ना। इसलिए चार प्रकार की ये असत तृष्णाएं हैं, और अपराध चार प्रकार के बतलाए। क्या प्रकार के अपराध, क्या हुआ, चार प्रकार के अपराध। एक कृष्ण का प्रति अपराध, एक कृष्ण नाम के प्रति अपराध, वही कृष्ण ही स्वरूप है। कृष्ण के प्रति, स्वरूप के प्रति, तदीय वस्तुओं के प्रति, वैष्णव, तुलसी, गंगा, जमुना, वैष्णव, भागवत, ये सब तदीय है, इनके प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। कृष्ण नाम के प्रति अपराध, 10 प्रकार के अपराध हैं, नहीं होना चाहिए। सेवा अपराध नहीं होना चाहिए। और चित्कनेशु, किसी जीव के प्रति भी अपराध न हो। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, किसी जीव को भी, प्राणी मात्र को भी उद्वेग मत दो। कृष्ण के ये सभी जीव कृष्ण के प्रिय हैं, कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण उनमें रहते हैं। ये 4 प्रकार के अपराध हैं, 4 प्रकार के अपराधों से बचना चाहिए। अब चौथा आया हृदय दुर्बल, इसके बाद में कह रहे हैं तुच्छ आसक्ति, आसक्ति से चित्त दुर्बल होता है। आया था कि मैं विवाह करूं कि न करूं, अरे सभी लोगों ने विवाह किया, महाप्रभु के गणों ने और जितने हैं गोपियों ने भी विवाह किया, ये क्या हर्ज। फिर थोड़ी देर में बात आया, गुरु जी ने वैष्णव ने कहा कि भाई ये तो ढका हुआ आग का कुआं है, जल मरोगे, मत करो। ताजे अब नहीं करते, किंतु बाद में हमारा पिंड कौन देगा, कौन पिंड देगा, वंश परंपरा कैसे चले, तुम्ही को इसका ये है। अब तो सभी यदि मुक्त हो जाए तो ये जगत कैसे चलेगा। माने कृष्ण ने उनके ऊपर में ही इसका दायित्व दिया, ये तुम देखो। बहुत से लोग कहते हैं अच्छे बतलाओ तो सभी मुक्त हो जाएंगे तो ये जगत कैसे चलेगा, तुम्हारे ऊपर में भार है। एक छागल, छागल माने बकरी, उसके समस्त अंगों में केस है, एक एक केस गिर भी गिर गया तो बकरी का क्या हर्ज हुआ, उसके लाखों केस हैं। वैसे ही कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड में अनगिनत जीव, उसमें से एक ब्रह्मांड तर भी गया तो क्या हर्ज हुआ। तुम चिंता मत करो, तुम भजन करो तो ऐसी तुच्छ आसक्ति नहीं हो, आसक्ति से चित्त दुर्बल हो जाता है। कुछ लोग आसक्ति भीतर में संसारी के रहते हैं, गुरु वैष्णव से जरा दूर रहते हैं, उनके निकट नहीं रहते। ऐसा नहीं करना। गुरु जी कहते थे जो हम लोगों से जो दूर रहते हैं, हमसे जो दूर रहते हैं, समझे कुछ आसक्ति है, नहीं तो दूर नहीं रहते। देखेंगे यदि वो इस पर गड़बड़ कर दें, उनकी दृष्टि में पड़ जाए, ऐसा मत करो। अपना हृदय खोल करके गुरु जी के सामने, वैष्णव के सामने रख दो, जो कुछ हो वो देखे। कुछ नहीं विशेष निषेध जितने हैं शास्त्रों में, हरिभक्ति विलास में, इन सबको मानना चाहिए, इनको निषेध दूर, भक्ति से दूर रखना चाहिए। मास्तर्य और गुणों को, दुर्गुणों को तो हम काम में लाएंगे, किंतु मास्तर्य किसी काम में नहीं आते। द्वेष पूर्ण शत्रुता पूर्वक व्यवहार मत करो, किसी से द्वेष मत करो, मात्सर्य मत करो। तो उन्होंने हमको मारा, हम उनसे कुछ नहीं करें, अरे उन्होंने नहीं मारा, तुम्हारे कर्म ने मारा, ये सुनते हैं किंतु काम के समय में भूल जाएंगे। काम के समय में मत भूलो इस चीजों को, उसने हमारा अपमान किया, नहीं उसने अपमान नहीं किया, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारा अपमान किया। इस चीज को समझना चाहिए भजन राज्य में, और नहीं तो ईर्ष्या होकर के डूब मरे। अरे गुरु की बात नहीं सुनते हैं सब, गुरु कहते हैं कि द्वेष मत करो, और हम लोग द्वेष करने लगते हैं। इसे द्वेष नहीं होना चाहिए, यह भक्ति का विरोधी है। यदि क्रोध है उसको भी हम काम में लगा लेंगे। हनुमान जी ने, ब्रजांग जी ने क्रोध करके लंका को जला दिया, कोई विवाद नहीं। ऐसे जितने भी दोष हैं ये सब काम में आ जाएंगे, दूसरे दुर्गुण है, किंतु मात्सर्य नहीं आता। स्व प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठा की कामना मत करो, ये भक्ति का प्रधान भागक है। स्त्री पुत्र को छोड़ देना, धन संपत्ति छोड़ देना ये सहज है, किंतु प्रतिष्ठा छोड़ना बड़ा भारी कठिन है। मान अपमान के लिए हम भक्जन को भी छोड़ देते हैं, इसलिए मत छोड़ो। हृदय दौर्बल्यम बुदई सब गेयम किले चतुर्थ, ये चार प्रकार के ये हृदय दुर्बल है, इन सब को छोड़ करके भगवान का भजन करो, राधा कृष्ण का भजन करो, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की जंचा करो, हम लोग भजन राज्य में प्रवेश कर सके, अन्यथा भजन से प्रवेश कर। हम लोग अभी जाएंगे, अभी आज व्रत शेष होगा, मुंडन हम लोग करेंगे, अभी थोड़ी देर में यज्ञ होगा, इसके बाद में प्रसाद इत्यादि के बाद में सभी लोग देखेंगे बाजार में दौड़ेंगे, कोई सील लोहा खरीदेंगे, कोई यहां की छपी हुई साड़ी खरीदेंगे, कोई कुछ खरीदेंगे, वृंदावन का चिन्ह लेंगे, थोड़ा सा लेने की चेष्टा करो, यदि थोड़ा सा भी ले लिया जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए जो हम लोगों ने कहा, जो कुछ सुना हम भी लेंगे, आप लोग भी उस संपत्ति को लीजिए, वृंदावन की यही संपत्ति है, इसी को लेकर के हम घर में जाएंगे, और कोई चीज मत ले जाइए, बस इसको ले जाइए, इन चीजों को याद रखिए। हम लोग कहां कहां भ्रमण किया, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, कदम बटेर, उद्धव क्यारी, भांडीर बन, और वहां के लीलाओं को सुनाया। प्रतिदिन आप लोग वहां पर जाएंगे, उन लीला के स्थलों में कृष्ण की उन लीलाओं को प्रणाम करेंगे, क्रमशः चित्त भगवान में लगे, इससे बढ़कर के और कोई संपत्ति नहीं है। घर में जाकर के सब भूल मत जाएंगे, यही संपत्ति लेकर के आप लोग जाइए। आज हम लोग इसके बाद में अपना व्रत समाप्त करेंगे, व्रत समाप्त होगा किंतु व्रत समाप्त नहीं, आज से आरंभ करेंगे अब जीवन में प्रतिदिन ये जो कीर्तन हम लोग कर रहे हैं, जो भावना हम लोगों ने दिया है, उन भावों को लेकर के कृष्ण का भजन करें। आज यही हम वक्तव्य समाप्त करते हैं। आज हम लोगों के गोपीनाथ गौरी मठ में दिव्य प्रतिष्ठा है, यहां पर जल्दी से अपना खोल काज इत्यादि करा लीजिए, मुंडन करने वाले शायद उनको अभी तुरंत हमारे पुजारी जी भी बुला लेंगे, और जल्दी से कर करके
तरंग मध्य कृपामयी तां शरण प्रपन्ना नमस्ते चरणा अंगश्यामलि छटाभि मंदी कुसेंदी वरम जागुगरोचि संग विदधतम पट्टंबरस्या बृंदारण्य निवासिनम हृदि लसद्दामाभिरामोदरम राधा स्पंद निवेशितोज्वल भुजम ध्यायेम दामोदर। मैं अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरषष्ठम भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में आंतरिक श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूं। मैं बैठो चुपचाप। तत्पश्चात परम पूज्यराज
श्री भक्ति वैभव पुरी महाराज जी के चरणों में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। तत्पश्चात अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता परम पूज्यपाद प्रवेजकाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत बामन महाराज जी के चरण कमलों में आंतरिक श्रद्धा ज्ञापन करता। तत्पश्चात हमारे सतीर्थ सन्यासी वर्ग वैष्णव एवं वैष्णवी वर्ग, आज हम लोगों का परम आनंद का दिवस है कि आज हम सेवा कुंज के अंतर्गत श्रीमती राधिका जी का ये कुंज कहलाता है, उसके अंतर्गत हम लोग श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ में श्री विग्रह प्रतिष्ठा के उपलक्ष में
हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज अभी सवेरे से मध्यान्ह काल तक बड़े समारोह के साथ में और बड़ी अच्छी तरह से सुस्त रूप में श्री विग्रह प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। अभी हम लोगों ने प्रोग्राम में रखा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का वैशिष्ट और श्री विग्रह प्रतिष्ठा के संबंध में हमारे संप्रदाय का क्या विचार है, उसका क्या वैशिष्ट है, उसके संबंध में हमारे पूजनीय वैष्णवगण आचार्यगण इसके संबंध में बतलाएंगे। आजकल दुर्दिन का विषय यह है कि आज अधिकांश लोग भक्ति के विरोधी हो रहे हैं, शुद्ध भक्ति के विचारों को ग्रहण नहीं करना चाहते, समाज भी कुछ उल्टा हो रहा है, श्री विग्रह को आज मानना नहीं चाहते, एक पुतली की भांति स्टैचू की भांति रखना चाहते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा वैष्णवों से आचार्यों से, जो आज श्री चैतन्य महाप्रभु का वैशिष्ट और अवतारों की अपेक्षा और विशेष करके उसके अंतर्गत हमारे संप्रदाय में श्री विग्रह का तत्व किस रूप में ग्रहण किया जाता है, इसके संबंध में ये लोग कुछ कुछ अपने विचारों को प्रकट करेंगे। पूज्यपाद हमारे आचार्य देव पूज्यपाद बामन महाराज जी ने हमसे कहा कि सबसे पहले हमारे पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी महाराज जी अपने कुछ विचार प्रकट करेंगे इस विषय।
समर्पण करता हूं मैं अमर जागत शुद्ध चलमती असया प्रसव कृतघ्नो दुर्मानी स्मर पर वशो वंचन पर नृशंस पापिष्ठ कथमिहमितो दुख जलधीर पारा दुक्तिम भव परिचरेयम चरणयो। मैं अमर ज्ञान है, मेरी मर्यादा ज्ञान नहीं है, मैं अपराधी है, परे उद्वेग दिया थी जो तो दिया थी जुड़े प्लेस। मैं हरेक समय मानता हूं कि मेरे दुर्बलता जो है इसको सबलता करके प्रकाश नहीं करना चाहिए, परंतु सदृशम चेष्टते सस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि जो पूर्व संस्कार है इस हमने छोड़ता नहीं है, वो अहंकार मुझे साधिन कर लिया है। इसलिए हम वैष्णव गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। तो वैष्णव को पहले नमस्कार। श्री चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं पतितानां पावरेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित गण के उद्धार करने के लिए आप सब प्रपंच में उदित हुए हैं, तो मैं पतिता धम हूं, मुझे आप कृपा करना। जब कुछ अपराध तो होगा ही, बद्ध जीव है अपराध तो होता है, तब और शरण्य कोई नहीं है, वही वैष्णव अदोष दर्शी है। जब कुछ भूल भ्रांति होता है आप मुझे क्षमा करना और वैष्णव का दया यही आवश्यक है। तो आज जो सुदीन है ये भगवान का श्री कृष्ण भगवान का आविर्भाव हुआ है, श्री कृष्ण चंद्र का भूमि है, यह यही वृंदावन वैकुंठात मधुपुरी वैकुंठा से श्रेष्ठ है मधुपुरी, मधुपुरी से श्रेष्ठ है वृंदावन जहां नित्य लीला रास, और नित्य लीला रास में भगवान हमेशा है। तो तो आज हमको दर्शन देते हैं ये महाराज का अनुग्रह से, ये हमारी भाग्य है। तो हम अभी ए महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ वृंदावन आए हैं और महाप्रभु वृंदावन में ये उसका क्या अक्रूर घाट में रहते थे। अक्रूर घाट से रोज सवेरे 6 बजे को आके 12 बजे तक इमली तला में बैठ के नाम करते थे और 12 बजे को फिर वापस जाते जाके और जो कुछ अतिथि का निमंत्रण है वो निमंत्रण स्वीकार करते। तो महाप्रभु का ये वृंदावन में जो अवस्थान है और जितने सब लुप्त तीर्थ को उद्धार किए हैं और शक्ति संचार करके रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को लुप्त तीर्थ उद्धार करने के लिए शक्ति संचार किए हैं और रूप गोस्वामी महाप्रभु का प्रिय है ये इसलिए कहते हैं ये महाप्रभु का जो प्राचार्य विषय है वही भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि मुदग्ध माधव ललित माधव और बहुत सा ग्रंथ रचना करके महाप्रभु का उद्देश्य महाप्रभु का प्राचार्य विषय है ऐसा प्रचार किया है। ऐसा यही भूमि सर्वोस्वामी सब छोड़ देके नाना शास्त्र विचार एक निपुणों सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करु जो गोस्वामी वर्ग हैं सर्वगोस्वामी वर्ग हैं ये इधर आके ये मनुष्य समाज का बहुत उपकार किया है अचाप तीर्थ उद्धार किए हैं और महाप्रभु का जो विचार जो प्रचार जो विषय उसको स्थापन करके गए हैं। आज ये वृंदावन में जो कुछ लीला श्रवण करने को लिए अवकाश मिलता है यही रूप गोस्वामी का शिक्षा नहीं तो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी और सब गोपाल भट्ट गोस्वामी थी जीव गोस्वामी चंपू वगैरह लिख के वृंदावन का महिमा प्रचार किया। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देने के लिए आए हैं और वृंदावन में उनका बहुत रोज स्थिति नहीं हुआ है और वो पूरी चले गए हैं पूरी में रह के भी ये वृंदावन का लीला प्रचार किए हैं और वृंदावन में कहते हैं जब वृंदावन के उनका आनंद संपूर्ण आनंद अनुभव होता है क्यों झारखंड में जब आते थे तब सब पशु पक्षी कीट पतंग सब महाप्रभु का हरि ध्वनि श्रवण करके पास में आते थे। महाप्रभु सबको देख के समझते ही है यही तो वृंदावन है जहां निर्भय जहां वैर भाव नहीं है जहां शत्रुत्व नहीं है जहां हिंसा नहीं है वही भूमि है। गोष्ठे समस्तं सर्वानंदमयं मुकुंद द्वैतं लीलानुकूलं परम समस्त जीवराज सबका उद्देश्य एक है सब भगवान का सेवा कर रहे हैं यही गोलोक ही कली युग में ये भी यही गोकुल और गोकुल में जो कुछ है गोलोक में है गोलोक में जो कुछ है गोकुल में है महाप्रभु वही गोकुल का सिद्धांत प्रचार किए हैं। महाप्रभु जीव दया यही जीव दया जब तक नहीं होता है तब प्रचार नहीं होगा है। ये कवे जीवे दया हुई वे उदय निज सुख भूली सुदीन हृदय विनोद सेवक करिया विनय श्री आज्ञा तहल करी प्रचार আর কবে নিচাই চান করুণা করিবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে। তো এই বৃন্দাবন ধাম মে হাম বৈঠে হ্যাঁ আর আর বৃন্দাবন কে হ্যাঁ কি বৃন্দাবন মে বৈঠো বৃন্দাবন বৈঠ কে ভজন করো কর্মিভ্য পরিতোহরে প্রিয়তয়া ব্যক্তিম জ্যোতির্জ্ঞান তেভ্য জ্ঞান বিমুক্ত ভক্তি পরমা প্রেমৈক নিস্তাত্ম তেভ্যস্তা পশুপাল পঙ্কজ সাধ্যোপি সারাধিকা প্রেষ্টা তদ্বদীয়ম তদীয় সরসি তাঙ্গ্রেত কৃতি। যো উহা স্থান কা মহিমা কহা হ্যাঁ ইহা ভক্ত কা আর সেবক কা মহিমা কহতে হ্যাঁ। যো কর্মী সৎকর্মী ভগবান কা প্রিয় হ্যাঁ আর সৎকর্মী সে জ্ঞানী অধিক প্রিয় হ্যাঁ জ্ঞানী সে ভক্ত আর অধিক প্রিয় হ্যাঁ আর ভক্ত সে প্রেম ভক্ত অধিক প্রিয় হ্যাঁ প্রেম ভক্ত মে গোপী ভক্তি গোপী ভক্ত অধিক প্রিয় হ্যাঁ উসনে রাধিকা হ্যাঁ।